अगर आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, तो आपके पास चुनने के लिए एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक सिस्को नाम की कंपनी हो। सिस्को की शुरुआत ये थी कि यह पहली राष्ट्रीय कंपनी थी जो रेस्टोरेंट की जरूरत की हर चीज मुहैया कराती थी। उस जमाने में एलन जैसे लोगों के पास मक्खन के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर और अंडों के लिए एक और डिस्ट्रीब्यूटर होता था। लेकिन सिस्को को ब्रा लाइना कहा जाता है, जो पेपर प्रोडक्ट से लेकर मीट और अन्य उत्पादों तक सब कुछ सप्लाई करता है।
सिस्को 9 अलग अलग थोक रेस्टोरेंट डिस्ट्रीब्यूटर का विलय था, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना था।
यह 1969 की बात है। आज सिस्को इतना बड़ा हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके सिर्फ दो और प्रतिस्पर्धी हैं। उनमें से सिस्को सबसे बड़ा है और एक दशक पहले भी बाजार के अनुमानित 35% हिस्से पर इसका कब्जा था और इस साल उनका सकल मुनाफा $15 बिलियन तक पहुंच गया। सिस्को के बारे में डरावनी बात ये थी कि यह इतनी बड़ी कंपनी अपने जैविक विकास से नहीं बनी, बल्कि यह लगातार अधिग्रहणों के कारण बड़ी कंपनी बनी।
उन्होंने 150 से ज्यादा कंपनियों को खरीदकर रेस्टोरेंट के लिए एकमात्र राष्ट्रीय ब्रॉडलाइन वितरक बन गए हैं। बचत करने के लिए सिस्को बड़े पैमाने पर सबसे बड़े उत्पादकों के साथ काम करता है, ऐसे उत्पादक जिनके पास अक्सर सबसे ज्यादा शोषण करने वाले उत्पादन मॉडल होते हैं। सिस्को अपनी बेरी ड्रिस्कॉल जैसी कंपनियों से लेता है।
ड्रिस्कॉल ने मूल रूप से नाइके स्वेटशॉप मॉडल को बेरी उत्पादन में लागू किया और टायसन जैसी कंपनियों से चिकन। टायसन ने मांस उत्पादन के लिए एक निश्चित नकल मॉडल लागू किया। यदि आप एक राष्ट्रीय वितरक का उपयोग करते हैं, तो क्या आप ओमाहा सोल्डो प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप नहीं पा सकते हैं?
और ऐसा क्यों है? इसलिए बहुत से स्थानीय वितरक क्षेत्रीय वितरण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मात्रा और उत्पादन की मात्रा बहुत ज्यादा है।
सीफूड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सिस्को के कई प्रदाताओं पर बंधुआ मजदूरी कराने का आरोप लगा है। मूल रूप से खाद्य प्रणाली का कोई भी काला हिस्सा विदेश चला गया है, जिससे उस पर नजर रखना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन सिस्को केवल झींगा और स्ट्रॉबेरी ही नहीं मंगवाता है, उनके पास बड़े पैमाने पर निर्मित जमे हुए खाद्य पदार्थों की अपनी लाइन है। जमे हुए भोजन, जैसा कि पता चला है, सिस्को के व्यापार मॉडल का केवल एक पहलू नहीं है, यह उसे आगे बढ़ाता है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि जमे हुए भोजन के कारण इतनी लंबी शोषणकारी आपूर्ति श्रृंखला चलती है। 2000 के दशक की शुरुआत में सिस्को मेक्सिको में तैयार किए गए जिलपिनो पॉपस को न्यूनतम वेतन से बहुत कम पर खरीदता था और पूरे देश में जमा कर भेजता था। इससे श्रम मानकों और वेतन के मामले में निचले स्तर तक पहुंचने की होड़ मची हुई है। मुझे गलत मत समझिए, आपने शायद सिस्को का जमे हुए भोजन खाया होगा और सोचा होगा कि यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि इस विशाल खाद्य प्रणाली में कुछ खो रहा है। क्षेत्रीय विविधता, स्थानीय नौकरियां, स्थानीय व्यवसाय और बस एक अनोखा भोजन, एक ऐसा भोजन जो अलग हो।